ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् नट्ठवियट्ठकम्मम् वीरम्णमियूणपत्तसौवट्ठम् अणुभागस्सविहत्तिम् जहो वै संपरुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीर्षभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। अभी आज से हमारी पांचवी पुस्तक शुरू हो जाती है और अभी हमने मंगलाचरण एक नंबर के पृष्ठ पर पढ़ा है। विषय शुरू करने के पहले हम यहाँ विषय परिचय जो पुस्तक में दिया है उसको देखेंगे, प्रस्तावना जिसको कहते हैं। ये प्रस्तावना का पृष्ठ विषय परिचय जहाँ शुरू होता है 6 नंबर है, वहां से शुरू करते हैं। पुस्तक में क्या विषय आने वाला है इसकी यहाँ चर्चा की है, पढ़ते अभी हम। अभी तक हमने स्थिति विभक्ति का अधिकार देखा था, अब यहां से अनुभाग की बात चलेगी। प्रस्तुत अधिकार का नाम अनुभाग विभक्ति है। तो अनुभाग किसे कहना, तो कहते अनुभाग फलदान शक्ति को कहते हैं। कर्मों की जो फलदान शक्ति है, उसकी जो इंटेंसिटी है, कितना फल देते हैं कर्म, कितने प्रमाण में, उसको उसका अनुभाग कहते हैं। उसी को रस कहते हैं, उसी को विपाक कहते हैं। अनुभव भी शब्द आया है तत्वार सूत्र में, हाँ, अनुभव विपाक को। यह 2 प्रकार का है। बंध के समय जो अनुभाग प्राप्त होता है, जब कर्म बनते हैं उसी समय उसमें विशिष्ट अनुभाग होता है। क्यों? वो तो उसके अपने कारण होता है, परंतु उसमें निमित्त रूप से जीव के जो कषाय है, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद और कषाय, इसको मिलकर कषाय कहा है। तो योग के कारण प्रदेश और प्रकृति बंद होता है निमित्त से, और कषाय के अनुसार वहां स्थिति और अनुभाग का बंद होता है। तो बंधने के समय जो कोई अनुभाग है वो बंद के समय का अनुभाग कहेंगे, परंतु बंधने के पश्चात उस अनुभागों में बहुत कुछ उथल पुथल हो जाती है, सत्ता में पड़े पड़े भी और उदय में आते हुए भी, उस सभी की अभी यहाँ चर्चा चलेगी। तो बंध के समय जो अनुभाग प्राप्त होता है वह एक वह, और बंध के बाद द्वितीय आदि समयों में, दूसरे तीसरे चौथे, उसको द्वितीय आदि कहा, जो अनुभाग रहता है वह एक, ऐसे 2 प्रकार इसी में बताए। बंध के समय प्राप्त होने वाले अनुभाग का विचार महाबंध में किया है, मात्र उसका यहाँ अधिकार नहीं है। यहाँ तो ऐसे अनुभाग का विचार किया है जो सत्ता के रूप में बंध समय से लेकर अवस्थित रहता है। जैसे हमने स्थिति में भी देखा, बंध के समय से लेकर स्थितियों की चर्चा की थी, यहाँ बंध के समय को भी सत्ता में ही इंक्लूड करके अनुभाग की चर्चा करेंगे, उसका अकेला अलग से कोई वर्णन नहीं होगा यहाँ पर। वह बंध काल में जितना प्राप्त हुआ है उतना भी हो सकता है, सत्ता का जो अनुभाग है वो बंध काल में जितना है उतना भी हो सकता है, और क्रिया विशेष के कारण अन्य प्रकार भी हो सकता है। क्रिया विशेष का अर्थ क्या है? संकलेश अधिक बढ़ गया या विशुद्धि अधिक बढ़ गई। तो जैसे शुभ कर्मों का अनुभाग विशुद्धि के कारण बढ़ेगा, अशुभों का घटेगा। संकलेश ज्यादा हो गए तो उल्टा हो जाएगा। तो वो जो सत्ता का अनुभाग है उतना भी रह सकता है या अन्य प्रकार भी हो सकता है, उसको क्रिया विशेष कहें। मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां 28 है, ये तो हमने बहुत बार देखा। दर्शन मोह की 3, चारित्र मोह की 25। एक बार उत्तर भेदों का आश्रय लिए बिना, यानी केवल मूल प्रकृति मोहनीय इतनी बात करेंगे, उसको कहेंगे उत्तर प्रकृतियों का आश्रय लिए बिना मूल प्रकृति की बात करेंगे, और दूसरी बार इनका आश्रय लेकर प्रस्तुत अधिकार में अनुभाग का सांगोपांग विचार किया है। सांगोपांग यानी बहुत विस्तार से विचार किया है, इसलिए इसका अनुभाग विभक्ति नाम सार्थक है। अधिकार का नाम ही अनुभाग विभक्ति है, और जैसा नाम है वैसे ही उसमें चर्चा है। जिनागम में जैसा ग्रंथ का भी नाम होता है वैसे ही उसमें सारी बातें आती हैं। आत्मानुशासन कहो, इष्टोपदेश कहो, कोई भी ज्ञान दर्पण, कोई भी नाम, समय सार, प्रवचन सार, और जो उसका हेडिंग है, जो अधिकार है, वैसे ही उसमें बातें होती हैं। तदनुसार इस अधिकार के दो भेद है, मूल प्रकृति अनुभाग विभक्ति, हमें स्थिति विभक्ति कहने की आदत इतनी हो गई 3 पुस्तकों में तो मूल प्रकृति अनुभाग विभक्ति और उत्तर प्रकृति अनुभाग विभक्ति, उसमें भी चूर्णिकार आचार्य यतिषभ ने मूल प्रकृति अनुभाग विभक्ति की सूचना मात्र की है। वीरसेन स्वामी ने उसका विशेष व्याख्यान उच्चारणा वृत्ति के अनुसार 23 अनुयोग द्वारों का आलंबन लेकर किया है। यतिषभ आचार्य ने तो केवल सूत्र लिखे हैं और उसका सारा विस्तार वीरसेन स्वामी ने किया है। वे 23 अनुयोग द्वार ये है, अभी उनके ये क्रम से नाम बताते हैं। पहला है संज्ञा। इस सबका अर्थ और सभी बातें आने वाली है विस्तार से, हमें केवल यहाँ विषय परिचय देखेंगे, इसका विस्तार जो आगे आएगा ही। सर्व अनुभाग विभक्ति, उसको सर्वानुभाग विभक्ति कहा, नो सर्वानुभाग विभक्ति, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति, अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति। देखो चार भेद कहते, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, ये 5 नंबर हुए ना। अभी 6 नंबर पर जघन्य अनुभाग विभक्ति, अजघन्य अनुभाग विभक्ति, सादी अनुभाग विभक्ति, अनादि अनुभाग विभक्ति, ध्रुव अनुभाग विभक्ति, अध्रुव अनुभाग विभक्ति। एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल, जब काल कहेंगे तो एक ही जीव की अपेक्षा काल और एक ही जीव की अपेक्षा अंतर, फिर नाना जीवन या अनेक जीवों की अपेक्षा भंग विचय, आगे के जो सारे वो नाना जीवों की अपेक्षा ही कहेंगे, भागा भाग, परिमाण यानी प्रमाण, क्षेत्र जैसे हमने स्थिति में देखे थे, स्पर्शन, काल, ऊपर भी काल लिखा था मगर वो एक जीव की अपेक्षा था, अभी नाना जीवों की अपेक्षा काल कहेंगे, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। हाँ, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा कैसे उसमें क्या कहेंगे, एक जीव की अपेक्षा अलग अलग कर्मों में अल्प बहुत्व लगा सकते हैं, परंतु यहाँ तो नाना जीवों की अपेक्षा होगी। बात मूल प्रकृति अनुभाग विभक्ति एक है, इसलिए उसका विचार करते समय सन्निकर्ष अनुयोग द्वार संभव नहीं है। सन्निकर्ष किसको कहते हैं, एक का विशिष्ट अनुभाग होते हुए अन्य प्रकृतियों का कितना हो सकता है, जैसे हमने स्थिति विभक्ति में देखा था, मिथ्यात्व की जब उत्कृष्ट है तब सम्यक, तो सम्यक मिथ्यात्व की कितनी हो सकती है, उसके साथ एट ए टाइम दोनों की क्या कौन कौन सी बातें हो सकती है, उसको सन्निकर्ष कहते हैं। ये जहां एक ही प्रकृति है मोहनीय इतना ही कहेंगे तो वहां सन्निकर्ष नहीं हो सकता। अब ये जो हमने नाम पढ़े हैं उसका यहां स्वरूप बताते हैं। संज्ञा, घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा, जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने वाला होने से मोहिनी कर्म की घाती संज्ञा है। कर्म दो प्रकार के हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। उसमें से मोहिनी कर्म कौन सा है तो कहते घाती कर्म है, इसलिए उसकी घाती ऐसी संज्ञा है। गुणों का घात करता है के अर्थ क्या है, गुणों की जो स्वभाव रूप पर्याय है वो प्रकट नहीं होती, नहीं होती वो जीव के अपने कारण नहीं होती, परंतु वहां कर्मों का वैसा ही उदय पाया जाता है तो उसको कहेंगे कर्म ने वो उसका गुण का घात किया। ये उपचार कथन है। जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने वाला होने से, अभी इसमें जीव के कौन से अनुजीवी गुणों का घात हो रहा है, मोहिनी के कारण दर्शन ज्ञान चारित्र सबका होगा। हाँ, श्रद्धा और चारित्र, श्रद्धा और चारित्र उसमें भी यह दो प्रकार की है। ये जो घाती संज्ञा लिखी है ना, तो उसमें भी ये दो प्रकार हो गए, है तो घाती कर्म, परंतु मोहिनी में भी जो घाती कर्म कहा मोहिनी को, उसके मोहिनी के 28 भेद है, तो उसमें भी दो प्रकार हो गए, कौन से, सर्वघाती और देशघाती। जो जिसके उदय होने पर अपने प्रतिपक्ष का पूरा ही घात होता है वो सर्वघाती, जैसे मिथ्यात्व सर्वघाती है, मिथ्यात्व का उदय हो और थोड़ा सम्यक्त्व चले ऐसा नहीं हो सकता, सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो और सम्यक्त्व बना रहे ऐसा नहीं हो सकता, तो वो दोनों प्रकृति सर्वघाती है। परंतु देशघाती किसको कहेंगे, सम्यक्त्व प्रकृति है तो दर्शन मोहिनी की, फिर भी उसका उदय भी होता रहे और सम्यक तो भी बना रहे ये हो सकता है, तो देशघात करता है, तो देशघाती कहेंगे उसको। अपने से संबंध रखने वाले जीव गुण का संबंध ने, जिसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, जैसे हमने अभी देखा श्रद्धा और चारित्र, उन जीव गुणों का जो पूरी तरह से घात करता है उसे सर्वघाती कहते हैं, और जो पूरी तरह से घात करने में समर्थ न होकर एक देश घात करता है उसे देशघाती कहते हैं। अश्विनी वो पंचलब्धि की पुस्तक होगी, हाँ मम्मी के पास, वो पढ़ना, उसमें ये सर्वघाती देशघाती उनके नाम ये सब बताया, ये आपको आसान पड़ेगा। हाँ चार्ट वगैरह सभी बना है, बहुत आसान करके बताया उसमें, शुरू शुरू में ये, आगे के चैप्टर भले मत पढ़ना। देखो क्या कहते हैं, यहाँ मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग सर्वघाती ही होगा, होता है। यहाँ अनुभाग की अपेक्षा ही बात कर रहे हैं, जो उत्कृष्ट अनुभाग है वो सर्वघाती होता है, आगे चलकर उसके नाम बताएंगे। जो मिनिमम अनुभाग है, ऐसे अनंत जो स्पर्धक है, अभी स्पर्धक क्या है उसकी बात करेंगे बाद में, तो उसको कहेंगे लता भाग वाले, उसको नाम देकर समझाया। फिर उसके अधिक अनुभाग वाले उसको कहेंगे दारू भाग वाले, उससे भी ज्यादा अनुभाग है वो अस्थि भाग वाले, और सबसे अधिक अनुभाग वाले वो शैल। तो जो यहाँ कहते हैं उत्कृष्ट अनुभाग जो है वो सर्वघाती ही होता है, क्योंकि उसका उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणामों से संगी पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव बंध करता है। ये सर्वघाती रूप जो उत्कृष्ट अनुभाग है उसका बंध कौन जीव करता है, तो मैक्सिमम संक्लेश परिणाम है ऐसा जीव, उसमें भी कौन सा लिया, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग, हमने देखा ना कषाय के अनुसार अनुभाग और स्थिति बनती, हमने संक्लेश के कारण स्थिति भी ज्यादा बनती ऐसा देखा था, उस समय अनुभाग का भी बंध अधिक होगा। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार का होता है, क्योंकि उसमें जघन्य अनुभाग भी सम्मिलित है, भी लिखा, क्या कहते हैं, अनुत्कृष्ट अनुभाग जो है उसमें सर्वघाती भी होते देशघाती भी होते हैं। तो देशघाती, देखो सर्वघाती के तो सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, परंतु देशघाती के स्पर्धक कैसे हो गए, सर्वघाती भी होते हैं, देशघाती भी होते हैं। जैसे अभी हमने देखे ना, शैल ऊपर से देखेंगे, अस्थि और दारू जो है उसके दो भाग करने, अनंत बहुभाग ऊपर की ओर सर्वघाती में रखना, और अनंत वा जो भाग है वो देशघाती होता है, और लता वाले सारे वो देशघाती ही होते हैं। स्पर्धक, स्पर्धक की बात है, और यहाँ प्रकृति की बात लिख रहे हैं। जो देशघाती प्रकृति है उसमें शैल, अस्थि, दारू और लता वाले सभी स्पर्धक पाए जाते हैं। देशघाती प्रकृति, प्रकृति अलग बात है, स्पर्धक अलग बात है। देखो, स्पर्धक को समझने के लिए जीव परमाणुओं का बंध करता है, उसमें विशिष्ट अनुभाग है, फल देने की शक्ति है। तो ऐसे समान समान समान, जिसमें मान लेते हम 100 से शुरुआत करते हैं, होते तो अनंत है अनुभाग, जिसमें 100 100 100 100 ऐसा अनुभाग है, ऐसे ग्रुप ऑफ परमाणुओं को हम वर्गणा कहेंगे। वर्गणा तो 100 वाली एक वर्गणा हुई, उसमें बहुत सारे परमाणु हैं। 101 वाले जो अलग सारे जो ग्रुप है, वो भले इकट्ठे एक जगह नहीं है जीव के प्रदेशों में, स्प्रेड आउट है सब जगह, फिर भी जिनमें जिनमें 101 101 अनुभाग है उनको हम क्या कहेंगे, दूसरी वर्गणा कहेंगे। जिसमें 102 डिग्री अनुभाग है उसको हम कहेंगे ये तीसरी वर्गणा, 104 वाली चौथी वर्गणा। ऐसे अनंत वर्गणा का एक स्पर्धक होता है। ये पहले क्योंकि ये नाम अभी बारंबार आने वाले हैं, वर्ग वर्गणा स्पर्धक वगैरह। वर्ग कहना परमाणु को, क्यों वर्ग कहना, उसमें विशिष्ट फलदान देने की शक्ति है, उसमें अनुभाग होता है। अब जिन वर्गों में, जिन परमाणुओं में समान अनुभाग पाया जाएगा, उनका जो ग्रुप है, उसका जो समूह है, उसको कहेंगे वर्गणा, यानी वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। समान अनुभाग वाले वर्गों के समूह को वर्गणा कहेंगे। अभी हमने मान लिया है 100 अनुभाग है, उसकी ये पहली वर्गणा हमने कही, जघन्य वर्गणा, मिनिमम अनुभाग वाली जघन्य वर्गणा। अभी वर्गणा है तो उसमें तो कुछ तो परमाणु की संख्या है ना वहां पर। अभी हम आड़ी लाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आड़ी लाइन करते हैं तो हमें निषेक की याद आती है, तो हम इसको गोला करेंगे ऐसा। तो इसमें विशिष्ट नंबर ऑफ परमाणु है, फिर भी परमाणुओं की संख्या दिखाने के लिए हम ऐसा लिखेंगे, अभी आपको बताने के लिए। ये परमाणुओं की संख्या, अभी यहाँ निषेक का विचार मत करना, यहाँ अनुभाग का विचार करना है। अब जो 101 वाले जो परमाणुओं का ग्रुप है उसको हम ऐसा यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि उसमें अनुभाग तो एक ज्यादा है परंतु उनमें परमाणु कुछ कम है। 100 नंबर के अनुभाग वाले जितने परमाणु है उनसे 101 अनुभाग वाले परमाणुओं की संख्या थोड़ी कम होती है। 102 अनुभाग वालों की संख्या उनसे भी थोड़ी कम होगी। इस तरह से अनंत वर्गणा चली जाती है। अब हम बीच के छोड़ देंगे, 100 अनुभाग से लेकर जब अनुभाग 200 हो जाएगा, तो 200 अनुभाग की जो वर्गणा है ना, वहां से हम दूसरा स्पर्धक कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अनुभाग डबल हुआ है। तो ये 200 वाली जो है वो दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा कहेंगे। हमने क्या देखा था, 101 क्या कहा था, पहला स्पर्धक की पहली वर्गणा। इसमें बहुत सारे वर्गणाएं होगी, यानी 199 तक नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, वो बाद में जब विषय आएगा तब समझाएंगे। हम मान लेते कि 100 101 102 103 104 इस तरह से करते करते 120 तक वर्गणा है, और 121 से 199 तक कुछ वर्गणाएं नहीं है। तो ये जो 100 से लेकर 120 तक के वर्गणाओं का जो समूह है उसको कहेंगे स्पर्धक। तो ये एक स्पर्धक हुआ, बीच में गैप है, वहां कोई वर्गणाएं नहीं है। 100 का 200 हो जाता है, यह गैप है, परंतु वहां परमाणुओं की संख्या इसी क्रम से रिड्यूस होगी। वहां वर्गणा है नहीं, फिर भी उसमें इसी पद्धति से परमाणु की संख्या थोड़ी कम होती चली जाएगी। अब ये जो 200 हो गया, फिर 201, 202, ये वैसे ये दूसरा स्पर्धक हुआ। तीसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा में कितना होगा अनुभाग, अभी बताओ आप। 300, डबल डबल नहीं होता, पहले से दुगुना, फिर तीन गुना, पहले से तीन गुना, पहले से चार गुना, पहले से पांच गुना, इस तरह से एक स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, इस तरह से। तो हर समय परमाणुओं की संख्या घट रही है, जहां जाकर परमाणुओं की संख्या आधी होती है। पहले स्पर्धक के पहली वर्गणा के जितने परमाणु होते, अनुभाग की बात नहीं, परमाणु, अनुभाग तो बढ़ रहा है और परमाणु कंटिन्यूअस कम हो रहे हैं। जिस पोजीशन पर परमाणु की संख्या आधी होती है, वहां तक के जितने स्पर्धक है, उन सब स्पर्धकों की टोटल, उसको कहेंगे गुणहानि। ये शब्द हमेशा आने वाले हैं, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुणहानि। गुणहानि यानी गुणित प्रमाण में हानि, किसकी, परमाणु की संख्या की। अनुभाग जघन्य स्पर्धक वाले अनुभाग जो है, उसके बाद ऊपर की ओर हम बता रहे, जघन्य नीचे दिखाते हैं और उत्कृष्ट ऊपर दिखाते हैं। जघन्य से उत्कृष्ट की ओर अनुभाग बढ़ता है, परंतु उस वर्गणा में परमाणुओं की संख्या लगातार थोड़ी थोड़ी घटती है। जहां जाके वो आधी होती है, वहां तक के स्पर्धकों की जो टोटल है संख्या, उन सभी स्पर्धकों को कहेंगे ये एक गुणहानि हो, पहली गुणहानि। फिर दोबारा वो वर्गणा का समूह, उसको स्पर्धक कहेंगे, फिर एक स्पर्धक, दो स्पर्धक, तीन स्पर्धक, ऐसे बहुत सारे स्पर्धक होते हैं, तब हम कहेंगे वे दूसरी गुणहानि हो जाएगी। तो यही अनुभाग का ऐसी रचना होती है। तो उसको तो केवल ये सब इतनी डिटेल नहीं बताते हैं, समय हम ऐसे कहने एक स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, चौथा स्पर्धक, ऐसा कहेंगे। निषेकों में हम ऐसी आड़ी लाइन से बताते थे और स्पर्धकों में हम गोल गोल से बताएंगे। ये जो स्पर्धक ऐसे कहे, हमने तो देखे थे स्थितियां कितनी होती है, किसी जीव के मैक्सिमम सागरों में होगी, 70 कोड़ा कोड़ी भी होगी, फिर भी उसको असंख्यात कहेंगे। और स्पर्धक कितने होते हैं, तो अनंत होते हैं। ये इसमें एक डिफरेंस है। तो अब हम यहाँ आगे पढ़ेंगे तो जहां ये विषय फिर दोबारा आएगा, फिर चर्चा करेंगे इसकी। पर ये तो सामान्य से उसके नाम है। अभी जो हमने शैल, अस्थि वगैरह देखे ना, ये अनंत स्पर्धक होते हैं, उसमें अधिक ऊपर रहने अधिक अनुभाग, ऊपर के नहीं ज्यादा अनुभाग, तीव्र अनुभाग, उत्कृष्ट अनुभाग, उसको कहेंगे ये शैल वाले हैं। फिर ये अस्थि वाले हैं, इतने स्पर्धक दारू वाले और ये नीचे लता वाले। अब दारू के दो भाग करना, दारू का जो नीचे का अनंत वहां भाग है, उसको लता के साथ लेना, और ऊपर ये जो सारे है वो तो शैल अस्थि के साथ। तो यहां तक के जितने परमाणु है ये स्पर्धक है, दारू के अनंत बहुभाग तक, शैल अस्थि और दारू बहुभाग, इनको कहेंगे सर्वघाती स्पर्धक। अभी प्रकृति की बात नहीं कर रहे, विशिष्ट प्रकृति में सर्वघाती भी स्पर्धक होते, देशघाती भी होते। अभी हमने जैसे, अभी सम्यक की बात छोड़ो, ज्ञानावरणादि उसमें घटित होगा, दर्शन मोहनीय कुछ अलग बात होती है उसमें। इतना ख्याल में रखना कि ये ऊपर के सारे सर्वघाती स्पर्धक है और नीचे दारू का अनंतवा भाग और सभी लता वाले जो है वो देशघाती स्पर्धक है। स्पर्धक की बात है, प्रकृति की नहीं। अब मैं प्रकृति की बात करूंगी। जो सर्वघाती प्रकृति है उसके जो स्पर्धक है वो सारे सर्वघाती ही होते हैं। क्या कहा, सर्वघाती प्रकृति। अभी हम समझने के लिए मोनी को अलग रखते, ज्ञानावरण की बात करेंगे। ज्ञानावरण की पांच प्रकृतियां हैं, उसमें केवल ज्ञानावरण ये सर्वघाती प्रकृति है, प्रकृति सर्वघाती है, और अन्य चार है वो देशघाती प्रकृति है। तो सर्वघाती प्रकृति का अर्थ क्या है, यहाँ क्या लिखा है, अपने से संबंध रखने वाले जीव का, जीव गुण का पूरा घात करते हैं। हम कहेंगे अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात करते हैं। तो केवल ज्ञानावरण ऐसी प्रकृति है, केवल ज्ञानावरण का प्रतिपक्ष कौन है? केवल ज्ञान है। तो उसका उदय होते हुए केवल ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं है, तो पूरा घात किया है, तो उसको सर्वघाती कहेंगे। तो केवल ज्ञानावरण में कौन कौन से स्पर्धक हो गए? शैल, अस्थि और दारू बहुभाग, यहां तक ही। केवल ज्ञानावरण प्रकृति में ये लता और नीचे वाले दारू वाले वो नहीं होते। अब हमें मति ज्ञानावरण, ये देशघाती प्रकृति। हम आपको सबको मति श्रुत ज्ञान का कुछ ना कुछ उघाड़ है, किसी को कम है ज्यादा है, परंतु उघाड़ तो है ही। मति श्रुत के ज्ञान के बिना कोई भी छद्मस्थ जीव नहीं पाया जाता। जिसको केवल ज्ञान नहीं है, उन सभी जीवों को मति श्रुत ज्ञान तो होगा ही होगा। इन एडिशन किसी को अवधि होगा, किसी को मन परे होगा, उसकी बात नहीं है, मिनिमम मति श्रुत तो होगा ही। यानी उसका क्या अर्थ है? मति ज्ञानावरण का उदय चलते हुए भी मति ज्ञानावरण प्रकट है। इसका अर्थ क्या? वो देशघाती प्रकृति है। अब देशघाती प्रकृति होते हुए भी उसमें सभी स्पर्धक पाए जाते हैं। जब बंद हुआ है मति ज्ञान का, मति ज्ञानावरण का, तो उसमें शैल वाले भी है, अस्थि वाले भी है, दारू वाले भी है और लता वाले भी है, स्पर्धक सभी है। परंतु जब उदय होता है देशघाती का, अभी जो मति ज्ञानावरण है उसका उदय चल रहा है हमारा, तो ये जो सर्वघाती है वो कभी कभी भी उदय रूप नहीं होंगे किसी जीव को। हमेशा क्या होगा? उदय होते होते देशघाती रूप होकर उदय में आ जाएंगे। और देशघाती में भी अनंत स्पर्धक होते हैं। तो जिसका अधिक आवरण है ऊपर की ओर का उदय होगा, तो उसका ज्ञान ही नहीं। हम कहते ये मति मंद है या ये एकेंद्रीय है, तो है तो उनके मति ज्ञान, परंतु उसका तीव्र आवरण का उदय चल रहा है। ये समझने के लिए हम ज्ञानावरण की बात निकाली। अब यहां जो है ये प्रकृति देशघाती है, स्पर्धक सभी है। उसका उदय किस रूप से चल रहा है, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा। ये सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है, परंतु हम कर्णानियोग के कथन में हर बार वो निमित्तों को याद नहीं करेंगे। ये समझ लेना पहले ही कि जीव के जो गुणों का घात हो रहा है, पर्याय जो उसी कोई विकारी है या कोई हीन प्रकट हो रही, उसके अपने कारण होती है, अपने उपादान से। उस समय सामने कर्मों का ऐसा ही उनकी स्वयं की योग्यता से उसकी अवस्था बनी हो जाती है और पाई जाती है। तो उसको कहेंगे जीव ने अनुभाग का घात किया या कर्म ने जीव का ऐसा उदय का फल मिला। ये कथन पद्धति है, आगे पढ़ेंगे। अभी देखो हम क्या देखें, ये संज्ञा वाले में नीचे से चौथी लाइन हमने ये पढ़ा था कि उत्कृष्ट जो है वो तो देश सर्वघाती होता है, और अनुत्कृष्ट है वो सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार का होता है, क्योंकि उसमें जघन्य अनुभाग भी सम्मिलित है। जघन्य अनुभाग देशघाती होता है क्योंकि इसमें एक स्थानिक अनुभाग की उपलब्धि होती है। अब यहाँ शब्द ये आएंगे, एक स्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक। एक स्थानिक अनुभाग यानी लता वाला, द्विस्थानिक यानी लता और दारू, त्रिस्थानिक लता दारू अस्थि, और चतुस्थानिक अनुभाग कहेंगे मोहिनी के बारे में अभी चल रही बात, तो लता, दारू, अस्थि और शैल। और अजघन्य अनुभाग देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार का होता है क्योंकि इसमें एक स्थानिक से लेकर चतुस्थानिक पर्यंत चारों प्रकार का अनुभाग उपलब्ध होता है। कुल अनुभाग चार प्रकार का होता है, एक स्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक। जहां केवल लतारूप अनुभाग होता है उसकी एक स्थानिक संज्ञा है। देखो ये लता का अर्थ क्या है ये नहीं बताएंगे क्योंकि अभी ये तो आगे की पुस्तक है ना, ये तो ये हमने जो लता वगैरह के अर्थ निकाले हैं तो कर्मकांड वगैरह हमने यहाँ पढ़ा था, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। तो तो उसमें ये सारा विस्तार से हम जान चुके हैं। तो इसलिए इसका अर्थ नहीं तो लता क्या होती है ऐसा लगेगा ना हमें, तो लता रूप अनुभाग होता है, उसकी एक स्थानिक संज्ञा है, संज्ञा ने नाम है। जहां लता और दारू रूप अनुभाग होता है उसकी द्विस्थानिक संज्ञा है, जहां लता दारू और अस्थि रूप अनुभाग होता है उसकी त्रिस्थानिक संज्ञा है, और जहां लता दारू अस्थि और शैल रूप अनुभाग होता है उसकी चतुस्थानिक संज्ञा है। इस प्रकार स्थान संज्ञा के चार भेद है, ये स्थानों के नाम हो गए। पहला नाम के कहा था घाती, और अभी इसके स्थानों के नाम बताए। यहां इतना विशेष समझ लेना चाहिए कि उत्तर अनुभाग में पूर्व अनुभाग गर्भित मान कर भी ये द्विस्थानिक आदि संज्ञाएं व्यवहृत होती यानी व्यवहार में आती है। जैसे ऊपर का अनुभाग कहेंगे तो उसमें नीचे के अनुभाग गर्भित होते ही है, फिर भी उसको द्विस्थानिक कहने की पद्धति है। यद्यपि लता दारू अस्थि और शैल ये उपमाएं मान कषाय के लिए दी जाती हैं। क्यों मान? जितना स्टिफनेस ज्यादा उतना मान ज्यादा है ना, इसलिए जैसे लता बहुत नरम होती है उससे कड़क दारू, दारू का अर्थ होता है सूखी लकड़ी, ये संस्कृत शब्द है दारू, दारू यानी मद्य नहीं। हाँ, अस्थि उससे भी स्टिफ है, और शैल यानी पर्वत, ये तो एकदम सबसे कड़क है। तो मान कषाय के लिए भी ऐसे उपमाएं दी जाती है, परंतु यहाँ सभी घाती कर्मों के लिए यही संज्ञाएं दी है। कौन से सभी घाती कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनी और अंतराय, सभी के ऐसे स्पर्धकों के नाम है। प्रत्येक के अपने अपने अलग है, प्रत्येक के अपने परमाणु अलग है, अपने स्पर्धक अलग है, फिर भी सबका नाम यही है। देखो ये मान कषाय के लिए दी जाती है क्योंकि उत्तरोत्तर इस प्रकार की कठोरता का अभाव उसमें संभव है, फिर भी यहां अनुभाग की उत्तरोत्तर तीव्रता को देखकर ये संज्ञाएं आरोपित की गई हैं। कठोरता का भाव क्या कहते हैं? मान को क्यों ऐसा लिया? क्योंकि कठोर अधिक, कठोरता अधिक अधिक है, कठिनता अधिक अधिक है, फिर भी यहां भी वे ही नाम दिए हैं तीव्रता की अपेक्षा। इनमें से लता रूप अनुभाग, अनुभाग हुआ अनुभाग, और दारू रूप अनुभाग का अनंतवा भाग देशघाती माना गया है। लता रूप सभी लता रूप में सभी स्पर्धक, और दारू रूप का अनंतवा भाग ये देशघाती उसको कहेंगे, और शेष अनुभाग, शेष में दारू का अनंत बहुभाग, अस्थि वाला और शैल वाला, वो सब अनुभाग जो है वो सर्वघाती माना गया है। मोनीय कर्म घातियों में पठित है, यानी वो घाती कर्म है, इसलिए संज्ञा के ये भेद शेष घाती कर्मों में भी संभव है, यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनी तो लिया ही, अंतराय को भी ये लता दारू अस्थि और शैल ये ही नाम बताएंगे। अघाती कर्मों में स्थान संज्ञा के चार भेद तो किए जाते हैं, जैसे घाती में चार नाम दिए हैं वैसे अघाती में भी चार होते हैं, पर उनके नाम अपने अवांतर भेदों के साथ पुण्य कर्म और पाप कर्म के भेद से अन्य हैं। घाती कर्म तो सभी घाती ही है, अघाती कर्मों में दो भेद होते हैं। अघाती के दो भेद कौन से? एक पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य घाती अघाती कर्म के नाम मालूम है? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, हर एक के दो दो डिविजन्स हो गए। जैसे साता वेदनीय पुण्य प्रकृति है, असाता वेदनीय पाप है। शुभ आयु में तीन आयु को शुभ लिया, देवायु, तिर्यंचायु और मनुष्यायु, और एक नरकायु को अशुभ लिया। उसके बाद नाम कर्म, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। और गोत्र में उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये पुण्य और पाप। अभी इसके भी चार चार नाम है, याद है किसी को? पुण्य के नाम मालूम है? क्या भूल गए? नीम कांजीर तो ये पाप के नाम है, कड़वाहट ज्यादा है ना, यहाँ सब स्वीट याद करना। हाँ गुड़, हाँ हाँ गुड़ खांड शक्कर और अमृत है ना, ये नीचे से ऊपर की ओर, और यहाँ नीम कांजीर विष और हलाहल, कड़वाहट ज्यादा है उसकी अपेक्षा से पाप कर्मों के नाम है। यहाँ उसकी चर्चा नहीं है क्योंकि अपना तो मोहनीय से संबंध है, तो वहां भी ये चार चार भेद हो गए, उनके भी स्पर्धक हो गए, उनका भी अपना अनुभाग होगा। मोहनीय कर्म के कुल भेद 28 हैं, उनकी अपेक्षा संज्ञा का विचार इस प्रकार है। सम्यक तो प्रकृति के जितने देशघाती स्पर्धक है वे सब संभव है। क्या कहना चाहते हैं? ये सम्यक प्रकृति कैसे तैयार होती है, मिथ्यात्व के जो स्पर्धक है ना वो कितने हैं, अभी इसमें से हम देखेंगे। उल्टा देख रहे थे, ये नीचे है, अभी हम स्पर्धकों की बात करते हैं। नीचे लता वाले और ये अनंतवा बहुभाग, अनंतवा भाग वाला है दारू का, और ऊपर ये सब सर्वघाती स्पर्धक है। अब मिथ्यात्व प्रकृति में कौन से स्पर्धक है, तो सभी सर्वघाती है, परंतु वो यहाँ नीचे तक नहीं आते हैं। ये जो नीचे के जो देशघाती तो छोड़ ही देना, ऊपर सर्वघाती में से भी थोड़ा छोड़ देना, और उसके ऊपर के जो है वो मिथ्यात्व के है, ये जो छोड़ दिया है वो सम्यक मिथ्यात्व के है। मिथ्यात्व के परमाणुओं का अनुभाग घटकर ही सम्यक मिथ्यात्व रूप होता है, और इसका भी अनुभाग और घट जाएगा तो ये दारू का भाग और लता वाले ये देशघाती हो जाएंगे। यानी सम्यक प्रकृति के सभी स्पर्धक देशघाती ही है। सम्यक तो प्रकृति में कोई सर्वघाती स्पर्धक है ही नहीं। जब सम्यक तो होता है ना, प्रथमोपशम सम्यक, तो उस काल में मिथ्यात्व का संक्रमण उसमें होता है, अनुभाग का संक्रमण। परमाणु तो परमाणु रूप ही रहेंगे, कर्म कर्म ही रहेगा, परंतु उसको पहले हम अधिक अनुभाग था, मिथ्यात्व कह रहे थे, अभी उसका अनुभाग घटकर ऐसा हो गया तो हम उसको सम्यक प्रकृति कहेंगे। मिथ्यात्व में देशघाती संक्रमण होने के बाद, संक्रमण होता है का अर्थ ही क्या होता है, उसका अनुभव घटता है। कुछ परमाणु मिथ्यात्व रूप से ही रहेंगे, अनुभव घटेगा पर यही मिथ्यात्व रूप से ही रहेंगे, कुछ सम्यक मिथ्यात्व रूप से हो जाएंगे और कुछ तो सम्यक प्रकृति रूप से हो जाएंगे। हाँ मिश्र वाले ने ये सम्यक मिथ्यात्व वाले, हाँ वो भी सर्वघाती की ओर ही वाले ही है, वो देशघाती नहीं है उसमें, सर्वघाती। हाँ क्योंकि उसका उदय में तीसरा गुण स्थान है, सम्यक्त्व का तो घात हो चुका उसका। वो मिथ्यात्व जैसा तीव्र नहीं है, उससे कम है, फिर भी सम्यक्त्व का तो घातता ही है। जात्यंतरे ने अन्य जाति का परिणाम, हाँ वो कब, हाँ इसकी, क्योंकि ये जो है ना वो बंधने वाली देशघाती नहीं है ये देशघाती। मैंने इसलिए बोला था कि ज्ञान आवरण का मैं उदाहरण लूंगी, इसलिए तब मैंने सम्यक्त को छोड़ दिया था वहां से। ये प्रकृति भी देशघाती है और उसके स्पर्धक भी देशघाती है। ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण प्रकृति तो देशघाती है, स्पर्धक सभी है चारों। हाँ अभी मैं समझाने के लिए, अवधि ज्ञानावरण भी देशघाती प्रकृति, प्रकृति की बात है। आपका अवधि ज्ञान है अभी नहीं, तो उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। अवधि ज्ञानावरण प्रकृति देशघाती है और स्पर्धक सर्वघाती का उदय हो सकता है उसमें। वैसे मति ज्ञानावरण का सर्वघाती का उदय कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा ही स्वभाव है, नहीं तो जीव जड़ हो जाएगा। हाँ निगोद में भी,
निगोद या जीव होता है उसके जो अक्षर का अनंतवा भाग वाला जो कोई
पर्याय नाम का ज्ञान है
वह भी निरावरण है, मति ज्ञान है लेकिन उसके ऊपर आवरण नहीं है।
यानी उतना तो खुला ही रहेगा,
उतना आवरण हो जाएगा तो जीव जड़ हो जाएगा, चेतन रहित हो जाएगा, ज्ञान रहित हो जाएगा। देखो कैसी व्यवस्था है,
ये स्वभाव है ना, उसका अंश तो प्रकट होगा ही। इसलिए मिथ्या दृष्टि के भी जो ज्ञान का प्रकट अंश है उसके द्वारा हम यहाँ ज्ञान हो रहा है इतना तो जानते हैं ना, तो मिथ्या दृष्टि को सम्यक तो कैसे होगा। तो उसके पास ये ज्ञान है उतना कि उसमें वो विचार करने की भी शक्ति है और उसको एहसास है अपने लक्षण का। ये जो सारा जो नेचर जिसको कहेंगे ना स्वभाव, ये अपने अनुकूल ही है। हम उसका विचार नहीं करते हैं और अपने आप को कल्पना में कुछ अन्य मान लेते हैं। देखो अभी यहाँ क्या कह रहे, सम्यक तो प्रकृति के जितने देशघाती स्पर्धक है वे सब संभव है। सब संभव है, सब देशघाती ही है उसके, उसमें कोई सर्वघाती स्पर्धक है ही नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व के प्रथम सर्वघाती स्पर्धक से लेकर दारू समान स्पर्धकों के अनंत विभाग तक ही स्पर्धक उपलब्ध होते हैं। ये वो अनंत विभाग तक, वो नीचे अनंत वा भाग उसमें नहीं पाया जाता सम्यक मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व के जहां सम्यक मिथ्यात्व का अंतिम स्पर्धक समाप्त तो होता है, वहां से लेकर आगे के सब सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं। देखो क्या कहना चाहते हैं, ये जो हमने देशघाती सर्वघाती देखे, नीचे से लेकर दारू के अनंत विभाग तक ये सारे देशघाती स्पर्धक ही है सम्यक प्रकृति के। उसका ऊपर का जो दारू का अनंत वा भाग है वो सम्यक मिथ्यात्व के हो गए, और इसके ऊपर के सभी मिथ्यात्व के, यानी मिथ्यात्व में भी तीव्रता से मंदता की ओर बहुत सारे स्पर्धक है। जब हम कहें ना तीव्र का उदय है, तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, तो शैल वाले किसी को बहुत अत्यंत तीव्र मिथ्यात्व का उदय चलना, और जब हम प्रायोगलब्धि वगैरह कहते हैं कि आगे चलता है तो मिथ्यात्व मंदता की ओर चला जाता है। वो मंद है तो मिथ्यात्व, मंद मिथ्यात्व का उदय है। दारू जीरो, दारू है ना, है ना, दारू का अनंत वा भाग सर्व देश गाती है, अनंत वा भाग, अनंत बहुभाग, वो भी अनंत वा भाग है, अनंत है, उसमें अनंत वा भाग तो लता के साथ चला गया, और जो रिमेनिंग है उसका अनंत वा भाग, हाँ नीचे की ओर का लेना, उसमें सर्वघाती का सबसे, हाँ तीन, तीनों है मिथ्यात्व में, तीनों है ऐसा वो भावदीपिका में तो उन्होंने बताया। जो तीव्र अनुभाग वाला जिसका उदय चल रहा है, ऐसे जीवों को उपदेश देने के भी योग्य नहीं कहते, यानी क्यों, क्योंकि इतने मंद विशुद्ध, इतने मंद परिणाम नहीं होंगे उसके, तो वो सुनने के लिए राजी नहीं होगा। वो तो विषय कषाय की बात उसको सुहाएगी, कोई जिनवाने भी बताने चला जाए, उसके हित की बात भी है तो उसको गुस्सा आएगा। गुस्सा तो जाने दो, वो आपको विघ्न करेगा ऐसा कहते हैं। अभी जो इतने मूर्तियों का खंडन हुआ है हिंदुस्तान में, या धर्म द्वेष के कारण जो होता है, तो ऐसे जीवों को क्या समझाना। अभी हम चौथी लाइन अंत में पढ़ रहे हैं, चार संज्वलनों को छोड़कर शेष 12 कषायों के द्विस्थानिक सर्वघाती स्पर्धक से लेकर आगे के सब स्पर्धक होते हैं। ये संज्वलन को छोड़कर जो अन्य जो है, अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण, ये सर्वघाती है, तो उसमें द्विस्थानिक नीचे के छोड़कर ऊपर के जो सभी स्पर्धक पाए जाते हैं, शैल और अस्थि वाले, चार संज्वलन और 9 कषायों के देशघाती और सर्वघाती सब स्पर्धक होते हैं। क्यों सर्वघाती होते हैं? अभी देखे, जैसे जिसको मिथ्या दृष्टि है तो उसको चारों कषाय चौकड़ी का उदय है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये तीन तो सर्वघाती है ही है, तो उसको संज्वलन का उदय होगा। तो कोई कहेगा ना हमारे मंद परिणाम है, ये संज्वलन का कार्य नहीं, अनंतानुबंधी के साथ जो संज्वलन का उदय है वो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। हमने पहले ऐसा भी कहा था, या ऐसे शास्त्र में उदाहरण भी आता है ना, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में अनंतानुबंधी के है, साथ अन्य भी है, तो उतना ही उसका फल भी मिलता है। वो भी सर्वघाती का कार्य कर रहा है। क्या सर्वघाती कर रहा है? वो भी संयम का पूरा घात कर रहा है, सम्यक तो भी नहीं होने दे रहा है। अनंतानुबंधी के साथ वाला संज्वलन है ना, अनंतानुबंधी के साथ जो अन्य सभी है, वो सभी का कार्य अनंतानुबंधी इतना ही तीव्र चल रहा है। जब एक रूम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और एक उसमें बहुत उधम मचाता है, तो उसको वहां बैठते तो सब उतनी उधम मचाते हैं। हमें पता है कौन ज्यादा उधम मचाने वाला है, उसको बाहर कर दो, क्या होता है? थोड़ी शांतता होती है ना। वैसे अनंतानुबंधी के साथ इनका उदय होता है तो इनका भी वैसा ही कार्य चलता है। उनके भी तीव्र स्पर्धकों का उदय वहां भी होता है। हर एक के अपने अपने अलग अलग स्पर्धक है, इनमें भी दोनों स्पर्धक है, देशघाती और सर्वघाती। तो मिथ्या दृष्टि के इनके सर्वघाती का उदय होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, चार संज्वलन और नौ नौ कषायों के देशघाती और सर्वघाती सब स्पर्धक होते हैं। यहाँ मिथ्यात्वादी कर्मों के अनुभाग स्पर्धक यद्यपि आगे अंत तक के कहे हैं, फिर भी उनमें तारतम्य है जिसका विशेष ज्ञान महाबंध के अल्पभूत्व से कर लेना चाहिए। सब में उस शैल की तरफ हम बताएंगे, सभी चतुस्थानीय भी होंगे, फिर भी हर एक का जो अंतिम स्पर्धक है, उसका जो अनुभाग है, उसमें तारतम्यता होगी, तारतम्यता उसमें होगी, कम अधिक होगा। इस प्रकार इन प्रकृतियों की स्पर्धक रचना का परिज्ञान करके, यानी अच्छी तरह से ज्ञान करके, इनमें घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा का ऊहापोह कर लेना चाहिए, यानी उसकी ऊहापोह ने अच्छी तरह से उसकी चर्चा करो। खुलासा इस प्रकार है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व बारह कषाय और छह नौ कषायों का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य चारों प्रकार का अनुभाग सर्वघाती ही होता है। ये तो यहाँ विषय परिचय है, और विस्तार में आगे आने वाली बात है, क्योंकि इन प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग भी सर्वघाती होता है। कौन कौन से लिए देखो, मिथ्यात्व यानी इनमें, अभी ये प्रकृति ऐसी है कि इनमें सर्वघाती ही स्पर्धक है, जघन्य भी सर्वघाती ही है। मिथ्यात्व में भी तीव्र अनुभाग शैल वाला तीव्र देंगे, और मंद में हम देश ये दारू वाला कोई जो उसका अपना जो मंद में मंद हो सकता वो भी सर्वघाती है। तो इसलिए कहते मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व बारह कषाय ने संज्वलन बिना बारह लेना हो, और छह नौ कषायों का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य चारों प्रकार का अनुभाग सर्वघाती ही होता है। तीन वेदों को छोड़कर, हाँ अभी कौन से नक्की करेंगे हम आगे, क्योंकि इन प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग भी सर्वघाती होता है। ये बारह कषाय में तो संज्वलन बिना बारह लेना, देखो हम पांचवें गुणस्थान के अभी अपना विषय चल रहा है ना, कार्तिकेय अनुपरीक्षा में, कार्तिकेय अनुपरीक्षा शाम को चल रही है, तो उसमें भी पांचवें गुणस्थान में ग्यारह प्रतिमा बताए। पांचवें गुणस्थान वाले को उदय कौन से है, प्रत्याख्यान आवरण और संज्वलन, दोनों का उदय चल रहा है। अभी जो पहली प्रतिमा वाला होगा उसके प्रत्याख्यान आवरण में भी अभी अनुभाग मंदता की ओर जा रहा है ना, उसका है तो उदय, सबको सब जगह कहेंगे दो कषाय चौकड़ी का उदय है और दो कषाय चौकड़ी का अभाव है। जिसका उदय है उसमें भी मंदता की ओर जितना बढ़ेगा उसकी उसको स्थिरता अधिक है, और उसका उतना उसका ऊपर की प्रतिमा है उसके। यहाँ क्या कहते हैं, इनका ये जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, ये प्रकृतियां सर्वघाती है, तो उनमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य चारों प्रकार का अनुभाग सर्वघाती ही होता है। यानी उसमें जगन्य में जगन्य अनुभाग भी सर्वघाती ही होगा, उसमें देशघाती अनुभाग नहीं होगा, क्योंकि इन प्रकृतियों का जगन्य अनुभाग भी सर्वघाती होता है। यहाँ छह नौकषायों का जघन्य और अनुत्कृष्ट अनुभाग भी चूर्णी सूत्रकार ने विवक्षा भेद से सर्वघाती स्वीकार किया है। शेष रही चार संज्वलन और तीन वेद, आपने पूछा था ना अभी छह में किसको लेना, तो तीन वेदों को छोड़कर छह नौकषायन में तीन वेद बिना। अब जो छोड़े थे छह नौकषायों में वो चार संज्वलन और तीन वेद, ये सात प्रकृतियां, सो इनका उत्कृष्ट अनुभाग सर्वघाती ही होता है। उत्कृष्ट हुआ, उत्कृष्ट अनुभाग, इनमें जो उत्कृष्ट अनुभाग है वो जो स्पर्धक है वे तो है तो सर्वघाती, क्योंकि वह चतुस्थानिक होता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार का है। ये प्रकृतियां देशघाती है तो उसमें सभी चारों प्रकार के स्पर्धक हो गए। तो जो उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट उसी को कहते हैं जो टॉप मोस्ट है, वो तो सर्वघाती है। जो उत्कृष्ट नहीं है उस सबको अनुत्कृष्ट कहेंगे, यानी जघन्य को भी अनुत्कृष्ट ही नाम देंगे। तो देशघाती प्रकृति है तो उसमें देशघाती भी स्पर्धक हो गए। तो जो उत्कृष्ट नहीं है ऐसे सभी जो अनुत्कृष्ट है उसमें उत्कृष्ट के नीचे वाले अनुभाग वो तो सर्वघाती भी हो गए और सबसे नीचे है वो देशघाती भी हो गए। इसलिए कहते हैं अनुत्कृष्ट अनुभाग सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें एक स्थानिक जघन्य अनुभाग भी सम्मिलित है। ऐसा नहीं कि चार भेद में, यानी ऐसे नहीं करना, मान लेते ये उत्कृष्ट है, इतना उत्कृष्ट है तो जिसको उत्कृष्ट कहा है एक्चुअली टॉप मोस्ट है उसको उत्कृष्ट कहेंगे, उत्कृष्ट के बिना सभी उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे, तो उसमें जघन्य भी आ गए। अकेले जघन्य कहेंगे तो मिनिमम पॉसिबल उसको जघन्य कहेंगे और उसके बिना जो कुछ है वो सब अजघन्य कहलाएगा। ऐसा नहीं कि ये उत्कृष्ट है, ये अनुत्कृष्ट है, ये अजघन्य है और ये जघन्य, ऐसा नहीं है। दो ही लिमिट्स है, एक उत्कृष्ट और एक जघन्य। जो उत्कृष्ट नहीं वो अनुत्कृष्ट और जो जघन्य नहीं वो अजघन्य। अभी उत्कृष्ट वाला तो सर्वघाती है और अनुत्कृष्ट में जघन्य भी सम्मिलित है तो उसमें देशघाती भी है और सर्वघाती भी है। अकेला जघन्य कहेंगे तो कहेंगे वो देशघाती है और अजघन्य में सभी आ गए, देशघाती भी और सर्वघाती भी। भी सम्मिलित है का ना, क्योंकि यानी उसमें अनुत्कृष्ट में जघन्य भी आता है, उत्कृष्ट के नीचे के सभी वो अनुत्कृष्ट में आ जाएंगे। तथा इनका जघन्य अनुभाग देशघाती होता है। जघन्य यानी मिनिमम पॉसिबल, उसमें रेंज नहीं होगी, जघन्य में जघन्य होगा उसको जघन्य कहेंगे, क्योंकि क्षपक श्रेणी में अपने अपने योग्य स्थान में वह एक स्थानिक ही उपलब्ध होता है। तथा इनका अजघन्य अनुभाग सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार का होता है। जैसे अनुत्कृष्ट में सर्वघाती देशघाती लिए, वैसे अजघन्य भी, जघन्य को छोड़कर बाकी सब अजघन्य, तो उसमें देशघाती भी हो गए और सर्वघाती भी हो गए। कारण का विचार कर कथन कर लेना चाहिए। स्थान संज्ञा की दृष्टि से विचार करने पर कहां किस स्थान रूप अनुभाग प्राप्त होता है इसका परिज्ञान कोष्ठक द्वारा कराया जाता है। अब प्रकृतियों के नाम पहले कॉलम में लिखे, मिथ्यात्व 12 कषाय और 6 नौकषाय। अभी हमने देखे थे ना, संज्वलन को छोड़ा और तीन वेदों को छोड़ा, उत्कृष्ट चतुस्थानिक उसको उत्कृष्ट कहेंगे, अनुत्कृष्ट चतु भी है, त्रि भी है, द्वि भी है, वो सारे अनुत्कृष्ट में आते हैं। एक स्थानिक लिया क्या इसमें? अन्यत्र तो एक स्थानिक भी लेते हैं हम, यहाँ क्यों नहीं लिया? ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं। मिथ्यात्व में एक स्थानिक वाला लता वाला कोई नहीं होगा। सम्यक मिथ्यात्व में तो द्विस्थानिक वाले ही होंगे सारे, उसमें तो चतुष्छल अस्थि तो होते ही नहीं है, दारू में ही कुछ भाग होते हैं उसके। तो इसलिए मिथ्यात्व 12 कषाय और 6 नौकषाय लिए। उत्कृष्ट चतुस्थानिक वाला उत्कृष्ट है, शैल वाले हो गए। अनुत्कृष्ट में चतुस्थानीय भी हो गए। देखो चतुस्थानीय में नीचे के गर्भित है, फिर भी उसको चतुस्थानीय यानी शैल वाले कहेंगे, अस्थि वाले कहेंगे, दारू वाले कहेंगे, परंतु इसमें लता भाग वाले नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रकृतियां सर्वघाती है और उसके स्पर्धक भी सभी सर्वघाती है। इसका जघन्य में जघन्य कहाँ होगा? द्विस्थानिक जो सर्वघाती ही है, वह जघन्य में। अभी उसके ऊपर चले जाओ, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक। सम्यक्त्व प्रकृति में उत्कृष्ट कौन सा है? द्विस्थानिक। क्यों? लतावारा और दारू का अनंत वा भाग, इसलिए द्विस्थानिक कहा। अनुत्कृष्ट में द्वि को भी लेना और एक को भी लेना। जघन्य में एक स्थानीय यानी लता वाले कहेंगे हम, और अजघन्य में एक और द्वि दोनों स्थानीय ले लेंगे। अब जो सम्यक मिथ्यात्व है उसके हमें कैसे देखे? सम्यक प्रकृति के जो नीचे के अनंत वा भाग है दारू का, उसके ऊपर के कुछ स्पर्धक लेने हैं, तो वो भी ऊपर के अपेक्षा से अनंत वा भाग ही कहलाएगा, फिर भी वो सारे द्विस्थानिक ही कहेंगे। उसमें ना त्रिस्थानिक चतुस्थानिक होते हैं, ना ही एक स्थानिक भी होते हैं। तो सम्यक मिथ्यात्व के जो सारे ही जो है उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट लगाएंगे हम, उसकी जो अपनी रेंज है उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट हो गए, परंतु सबका नाम द्विस्थानिक रहेगा। दारू का नीचे का अनंतवा भाग तो सम्यक प्रकृति रूप है, और उसके ऊपर का भी अनंतवा जो भाग है, हाँ नहीं, हमने जो देखे थे ना नीचे का तो हमने छोड़ा था लता के साथ दारू का अनंतवा भाग देशघाती रूप से, उसके ऊपर जो रेंज थी सम्यक मिथ्यात्व की, उसके ऊपर तो मिथ्यात्व पड़ा है सारा, बीच वाला लेना देशघाती के ऊपर वाला, और ऊपर जो सर्वघाती उसके नीचे सबसे नीचे वाला ऐसा। परंतु वे सभी द्विस्थानिक ही रहेंगे। अब चार संज्वलन और पुरुष वेद। उत्कृष्ट में तो चतुस्थानिक है, अनुत्कृष्ट में चतु, त्रि, द्वि और एक स्थानिक, क्योंकि हमने देखे थे ना ये प्रकृतियां देशघाती है। देखो ऊपर जो हमने देखे थे मिथ्या तो 12 कषाय 6 नौ कषाय, ये सर्वघाती प्रकृति थी। यानी उसने चतु, त्रि और द्वि ये तीन ही पॉसिबल हैं। सम्यक्त्व ये देशघाती प्रकृति और उसके सभी स्पर्धक भी देशघाती हैं। देशघाती प्रकृति अन्यत्र भी होती है, परंतु यहाँ की विशेषता क्या है? इसके सभी स्पर्धक भी देशघाती हैं। सम्यक मिथ्यात्व है तो सर्वघाती प्रकृति, परंतु उसके स्पर्धक द्विस्थानिक है। स्पर्धक भी सर्वघाती है परंतु द्विस्थानिक, त्रि और चतुस्थानिक नहीं है। चार संज्वलन और पुरुष वेद ये देशघाती प्रकृति है। सम्यक मिथ्यात्व के है तो सर्वघाती स्पर्धक, परंतु वो सारे द्विस्थानिक में है। हमने देखा था ना द्विस्थानिक यानी दारू का नीचे का भाग, बस उतना ही लता द्विस्थानिक, उसका नाम द्विस्थानिक, दारू वाले ने द्विस्थानिक, दारू वाले ने द्विस्थानिक, देशघाती नहीं, उसमें देशघाती नहीं। दारू का नीचे का भाग सम्यक्त्व के साथ जोड़ दो, सम्यक्त्व में जाएगा। केवल दारू के, वो भी नीचे के देशघाती छोड़कर जो ऊपर है, ऊपर का जो नीचे की ओर का जो है, हाँ लोएस्ट पार्ट, दारू का लोएस्ट है वो तो देशघाती में लता के साथ चला गया, उसके ऊपर का जो मिनिमम नीचे वाला है, सर्वघाती में से नीचे वाला, ये चार संज्वलन और पुरुष वेद है तो देशघाती प्रकृति। परंतु जैसे अन्यत्र हमने देखा था, देशघाती प्रकृति होते हुए भी स्पर्धक सभी हो गए, सर्वघाती भी स्पर्धक और देशघाती भी स्पर्धक, यानी सर्वघाती स्पर्धक प्लस देशघाती स्पर्धक। देखो जब चतु कहते तो हम कहना वो शैल वाले, जब त्रि कहेंगे तो कहेंगे अस्थि वाले, द्वि कह नहीं, चतुस्थानिक यानी शैल वाले, बस चतुस्थानिक का अर्थ होता है शैल वाले। देखो अनुत्कृष्ट चतुस्थानिक यानी शैल वालों को छोड़कर नीचे के शैल वाले भी लेना, उसमें ऊपर का मैक्सिमम शैल वाला छोड़ेंगे तो शैल के रिमेनिंग भी है ना, और नीचे तक सभी, क्योंकि देशघाती प्रकृति है उसमें देशघाती स्पर्धक भी है सर्वघाती स्पर्धक भी है, इसलिए अनुत्कृष्ट में सब लिए, चतु त्रि द्वि और एक, यानी रिमेनिंग शैल अस्थि दारू और लता सभी कुछ उसमें आ गए। जघन्य में एक स्थानीय, एक स्थानीय ने लता का मिनिमम जो होगा वो उसको एक स्थानीय में ले लेंगे। देखो चार संज्वलन पुरुष है, जब उनकी क्षपणा होती है तो मिनिमम पॉसिबल उसका अनुभाग हो जाता है, वहां की बात है ये जघन्य में लेना उसको। और जघन्य में अब जघन्य को एक को छोड़ो तो ऊपर के जो सारे स्पर्धक है तो फिर उसको एक द्वि त्रि चतु सब कहेंगे, यानी रिमेनिंग। लता में मिनिमम वाला लिया हमने यहाँ जघन्य में, तो मिनिमम वाले को छोड़कर रिमेनिंग लता दारू अस्थि और शैल वो सभी अजघन्य में आ जाएंगे। लिया ना उन्होंने अजघन्य में क्या लिखे हैं, चारों लिए हैं। हाँ अनुत्कृष्ट में भी सभी है, शैल का मैक्सिमम छोड़ेंगे तो नीचे के शैल यानी चतुस्थानी आए, फिर अस्थि दारू लता, यानी चारों लिए वहां पर, अनुत्कृष्ट में भी चारों लिए और जघन्य में भी चारों लिए। उत्कृष्ट में अकेला चतु लिया और जघन्य में अकेला एक स्थानीय लिया, एक स्थानीय में भी मिनिमम पॉसिबल अनुभाग की बात है वहां पर। अब स्त्री वेद और नपुसक वेद को अलग क्यों लिया है, देखो उत्कृष्ट में तो चतु लिया इसी के समान ही, अनुत्कृष्ट में चतु त्रि द्वि और एक स्थानीय, जघन्य में एक स्थानीय और अजघन्य में द्वि त्रि और चतु लिया, वहां एक नहीं लिया। उसका कारण नीचे लिखा है, देखो स्त्री वेदी और नपुसक वेदी जीवों के स्वोदय से, स्वोदय ने उसके उदय के साथ शपक श्रेणी पर चढ़ने पर अंतिम निषेक के उदय समय में एक स्थानिक जघन्य अनुभाग होता है, इसलिए इन दोनों वेदों का अजघन्य अनुभाग एक स्थानिक नहीं कहा है, एक स्थानिक यहां नहीं हो जाता है अजघन्य में, जघन्य उनके उदय का अंतिम समय लिया है। अभी इसकी विशेष चर्चा और कारण मीमांसा तो आगे मूल पुस्तक में आएगी। ये तो पहला हुआ अपना संज्ञा, अब दूसरा सर्व अनुभाग विभक्ति और नो सर्व विभक्ति, सर्व हुआ है सर, नो सर्व करना, ये दो और तीन एक साथ लिए हैं। सर्व विभक्ति में सब अनुभाग और नो सर्व विभक्ति में उससे कम अनुभाग विवक्षित है। जैसे हमने आपको स्थिति विभक्ति याद हो, जहां सभी विभक्तियां पॉसिबल है उसको सर्व विभक्ति कहते, जहां सभी नहीं होगा तो उसको नो सर्व कहें, इसके आगे चर्चा नहीं, बस यहाँ उसके नाम में ही आते, बाकी आगे तो उसका कुछ विशेष विस्तार नहीं होता है। मूल और उत्तर प्रकृतियों के भेद, हाँ सभी सभी स्पर्धक पाए जाएंगे तो उसको कहेंगे सर्व विभक्त, सर्व अनुभाग विभक्ति, और जहाँ सभी नहीं है तो उसको नो सर्व कहेंगे। मूल और उत्तर प्रकृतियों के भेद से यह यथा योग्य घटित कर लेना चाहिए। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, ये चार और पांच, सर्वोत्कृष्ट अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा का अनुभाग। देखो ये नाम आ गए अभी स्पर्धक और वर्गणा के, हमने देखा ना जघन्य से उत्कृष्ट तक हमने अनंत स्पर्धक देखे हैं, तो अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा, क्योंकि एक स्पर्धक में भी अनंत वर्गणा होते हैं और पर वर्गणा एक एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम अनुभाग वाली अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा है। जैसे हमने स्थिति में देखा था उत्कृष्ट स्थिति किसकी होती है, कौन से निषेक की, 70 कोड़ाकोड़ी का बंद हुआ उस समय जो अंतिम निषेक है, एक समय में तो निषेक रचना होती है, आबादा को छोड़कर तो कितने निषेक बने, और सत्ता में ऑलरेडी होते थे वो तो थे ही थे, अंतिम निषेक की जो स्थिति है उसको कहेंगे ना उत्कृष्ट स्थिति। वैसे यहाँ, अब यहाँ स्थिति का विचार मत करो, अब यहाँ स्पर्धक एक गोले गोले, अभी लाइन लाइन मत सोचो तो अंतिम स्पर्धक की जो अंतिम वर्गणा है, हमने देखा है जो पहले वर्गणा में कम अनुभाग है, दूसरे में एक ज्यादा है, तीसरे में और एक ज्यादा है, चौथे में, तो वहां अनंत होती है वर्गणा, एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा होती है, तो यहां अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा लेना। तो यहां कहते हैं सर्वोत्कृष्ट अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा का अनुभाग उत्कृष्ट विभक्ति कहलाता है, यानी उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति। यहां तो अनुभाग हर बार लिखेंगे ऐसी बात नहीं, तो उत्कृष्ट विभक्ति कहेंगे उसको, और उससे न्यून अनुभाग अनुत्कृष्ट विभक्ति कहा जाता है। विभक्ति यानी उसके जो अलग अलग वेरिएशंस जो है, यह भी अपने अपने अनुभाग का विचार कर घटित कर लेना चाहिए। हर एक का उत्कृष्ट अलग अलग होगा, है तो मोहन ये सभी, परंतु उत्तर प्रकृतियों में अपना अपना उत्कृष्ट अनुभाग भी अलग अलग लेवल पर होगा। जैसे हमने स्थिति में उत्कृष्ट स्थिति 70 है, किसी की 40 है, और नौ कषायों की अपनी अपनी अलग है। वैसे अब जघन्य और अजघन्य, जैसे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कहे, 6 और 7 जघन्य और अजघन्य, सबसे जघन्य स्थान की अंतिम वर्गणा का अनुभाग या अंतिम कृष्टि का अनुभाग, जब अंतिम कह रहे तो नीचे की ओर अंतिम लेना, यानी पहली प्रथम ऐसा लिखना चाहिए, पहले स्पर्धक का पहली वर्गणा, हम नीचे से शुरू करते हैं, पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा उसको अंतिम कहा, यानी इस ओर अंतिम। और यहाँ कृष्टि का भी नाम लिया, ये तो हमने मिनिमम पॉसिबल यहाँ स्पर्धक लिखा था। देखो ये संसार अवस्था में ये स्पर्धक होते हैं। अब सम्यक तो प्राप्त करेगा तो भी इसी भी स्पर्धकों में हीन होता है यहाँ पर ही, परंतु जब 8वें गुणस्थान में जाता है तो अपूर्व स्पर्धक तैयार होते हैं, अनुभाग घटकर इससे भी नीचे और भी वर्गणा और स्पर्धक तैयार होते हैं, इसको अपूर्व स्पर्धक कहेंगे। जितने समय बीत जाएंगे और नीचे की ओर रचना होगी, यानी अनुभाग घटते चले जाएंगे, अपूर्व अपूर्व स्पर्धक हो गए। अभी ये मान लेते हैं ये ऊपर पूर्व स्पर्धक थे और ये अपूर्व स्पर्धक हो गए, अभी और अनुभाग घटेगा, जितना जीव अपूर्वकरण में अनिवृत्तिकरण में चला जाता है और अनुभाग घटेगा, और अनुभाग घटकर क्या होगा, अभी यहाँ हम ऐसे वर्गणा दिखाएंगे ना, एक स्पर्धक में ये वर्गणा थी, वर्गणा का उसका विशेषता क्या थी, पर वर्गणा एक एक अनुभाग अविभाग प्रतिच्छेद अधिक अधिक ऊपर की ओर और नीचे की ओर कम कम था। अब इसमें से इन परमाणुओं का अनुभाग इतना कम होता है कि यहाँ कृष्टिया होती है, पहले तो पूर्व स्पर्धक में से अपूर्व स्पर्धक बने, इसके ऊपर पूर्वज थे उसके अपूर्व स्पर्धक बने ने अनुभाग घटा, अब अपूर्व स्पर्धक का भी अनुभाग घटेगा, तो यहाँ कृष्टि की रचना होगी। कृष्टि और वर्गणा में क्या अंतर है? तो पर कृष्टि अनुभाग अनंत गुणा होता है, वहां एक एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा था। नीचे की जो पहली कृष्टि है उससे ऊपर की कृष्टि में अनंत गुणा अविभाग प्रतिच्छेद, उससे अनंत गुणा ऊपर अधिक, अनंत गुणा अधिक ऊपर की ओर जा रहे ना, अनंत गुणा अधिक, यानी ऊपर से नीचे की ओर जितना बढ़ेंगे उतना अनुभाग अत्यंत हीन 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 घटता चला जाता है। सौ लिया, हाँ यहाँ तो सौ, एक सौ एक, एक सौ दो, ऐसे कंटिन्यूअस में लिया। अभी सौ के अनंत गुणा होकर ये हजार हो जाएगा, मान लेते दस ये अनंत होगा तो सौ हजार दस हजार इस तरह से, और उनके समूह ऐसा है, एक समय में इतने हो जाएगी कृष्टि, दूसरे समय में अनुभाग और घटेगा और उसके नीचे और नई कृष्टि हो जाएगी, उससे भी हीन अनुभाग वाले। इसी पद्धति से मोहनीय का अनुभाग घटते घटते इतना मंद हो जाएगा, फिर वो क्षपणा वगैरह का कार्य होता है, जैसे हमने देखा ना उसकी स्थितियां भी घटती है, उसके कांडक घात भी होते हैं, अनुभागों में भी कांडक घात होंगे। यहाँ पर आठवें इसमें नवे गुण स्थान में श्रेणी में होती है, शपक श्रेणी में होती है, नवे गुण स्थान में हमने सूक्ष्म कृष्टि करते हैं, पहले तो बादर कृष्टि होती है, बाद में सूक्ष्म कृष्टि होती है, तब जाके सूक्ष्म लोभ का उदय दसवें में होता है। नहीं नहीं, वेदनीय में कृष्टि नहीं होगी, ये कृष्टि तो इसमें होती है मोहनी में। हाँ कृष्टि का अर्थ होता है वर्गणा से भी अत्यंत हीन अनुभाग होना, अत्यंत मंद, जो पूर्व अवस्था में कभी नहीं था, पहले जो स्पर्धक थे उससे भी जो कम अनुभाग वाले स्पर्धक होंगे उनको अपूर्व स्पर्धक कहेंगे, ऐसे अपूर्व 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 हर समय में चलेंगे, उसके बाद ये कृष्टियों की रचना हो जाएगी। उपशम श्रेणी में तो केवल लोभ की कृष्टि होती है, और क्षपक श्रेणी में तो चारों की, क्रोध की, तीन संग्रह कृष्टि, एक एक कृष्टि और अनेक कृष्टियों का समूह, उसको संग्रह कृष्टि कहेंगे। ऐसे संग्रह कृष्टियों की भी रचना होती है एक एक नीचे, और उसका अनुभाग घटते चले जाता है। अभी उसको अभी भी स्पर्धक कह रहे, क्यों? क्योंकि वो वर्गणाओं का समूह है, प्रति वर्गणा एक एक का डिफरेंस है। अपूर्व स्पर्धक में भी अभी वर्गणाओं के ही समूह का स्पर्धक कह रहे, परंतु ऐसी वर्गणा अभी तक कभी नहीं हुई थी, इतना अनुभाग कम कभी नहीं हुआ था जो अभी श्रेणी में हुआ है, इसलिए उसको अपूर्व स्पर्धक कह रहे। हाँ, अपूर्व से भी हीन अनुभाग है, अत्यंत हीन है। देखो जघन्य अजघन्य देखा हमने, फिर देखते सबसे जघन्य स्थान की अंतिम वर्गणा का अनुभाग, अंतिम वर्गणा यानी नीचे की ओर की, जघन्य वर्गणा कहो या प्रथम वर्गणा कहो या अंतिम कृष्टि का अनुभाग जघन्य विभक्ति है। नीचे की ओर उसको हम अंतिम कहेंगे, ऊपर की ओर को भी अंतिम कहा, नीचे की ओर को भी अंतिम कहा, परंतु हम नीचे की ओर से नंबर लगाते उसको पहला नंबर देंगे, यानी जितना नीचे है उसको हम जघन्य कहेंगे, और इससे अनेक अनुभाग अजघन्य विभक्ति है जो मूल और उत्तर प्रकृतियों में यथा योग्य घटित कर लेना चाहिए। अब चार एक साथ बताएंगे, सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव विभक्ति। मूल प्रकृति की अपेक्षा जघन्य अनुभाग सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के होता है। जब मोहनीय प्रकृति इतनी बात करेंगे तो कोई भी प्रकृति हो तो उसको हम मोहनीय कहेंगे, 28 में से कोई भी हो तो सब मोहनियों में जघन्य अनुभाग कब होता है? दसवें गुण स्थान में, तो सूक्ष्म सांप्रायिक में, तो जघन्य अनुभाग सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के होता है, क्षपक की बात है। उपशमक का इतना जघन्य नहीं होगा अनुभाग, क्षपक का होगा। अतः जघन्य अनुभाग सादी और अध्रुव कहा है। शादी क्यों? क्योंकि इतना कभी नहीं हुआ था पहले, इसलिए शादी। और अध्रुव, ध्रुव तो उसको कहेंगे जो तो पहले से चला आया है, तो अभी नया हुआ ना, इसलिए अध्रुव। और ये अभी नष्ट होने वाला है, फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होने वाला। इसके पूर्व सब अनुभाग अजघन्य रूप रहता है, ये जो जघन्य नहीं है, जो क्षपक दसवें गुण स्थान में नहीं गया है, वो सब क्या कहेंगे? अजघन्य है। इसलिए अजघन्य अनुभाग अनादि तो है ही, साथ ही वह भव्य की अपेक्षा अध्रुव और अभव्य की अपेक्षा ध्रुव रूप होने से सादी विकल्प के सिवा तीन प्रकार का है। क्या कहना चाहते हैं? जो जघन्य नहीं है वो अजघन्य है। तो अजघन्य में तो उत्कृष्ट से लेकर सब कुछ आ गए अजघन्य में, तो वो कैसा है? अनादि तो है ही, अनादि से तो अजघन्य ही है। जघन्य नहीं था वो सारा अजघन्य, तो अनादि से अजघन्य ही चला आ रहा है, क्योंकि अनादि से तो मिथ्या तो, यानी मोहनीय तो है ही अनादि से। कैसा था? अजघन्य था। भव्य की अपेक्षा अध्रुव कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नष्ट होने वाला है, इसलिए अध्रुव कहेंगे। और अभव्य में तो हमेशा ही चलेगा, वो कभी जघन्य होने वाला ही नहीं है, अनादि अनंत अजघन्य ही रहने वाला है। अभव्य की अपेक्षा ध्रुव रूप होने से सादी विकल्प के सिवा तीन प्रकार का है, यानी अनादि है अभव्य में, उत्कृष्ट अनुभाग और अनुत्कृष्ट अनुभाग कदाचित होते हैं। देखो, जघन्य तो जब होता है सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में, उसके अलावा अजघन्य तो हमेशा ही होगे, क्योंकि उत्कृष्ट है या अनुत्कृष्ट उसको अजघन्य ही कहेंगे, तो वो तो हमेशा ही पाया गया था जब तक दसवा नहीं होता है तब तक। अब कहते उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट तो कभी कभी होगा, जब तीव्र संक्लेश हो गए तब उत्कृष्ट अनुभाग होगा, और अनुत्कृष्ट कदाचित होते हैं, यानी जब उत्कृष्ट हो रहा है उस समय अनुत्कृष्ट नहीं है, तो उत्कृष्ट कभी कभी होगा, तो अनुत्कृष्ट भी कभी होगा, भले अधिक बार हुआ, परंतु उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनादि से तो नहीं है। देखो, बीच में उत्कृष्ट भी होता है, तो दोनों को कैसे कहेंगे? सादी कहेंगे। अनादि से उत्कृष्ट 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 नहीं होगा, हर समय संकलिश परिणाम नहीं होता है। अनुत्कृष्ट भी अनादि से नहीं कहेंगे, कभी कभी उत्कृष्ट भी होता है ना उसको, इसलिए वो सादी है और अध्रुव है। उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा विचार करने पर, अब ये तो मोहनीय इन जनरल की बात की, उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा विचार करने पर चार संज्वलन और नौ नौ कषायों का जघन्य अनुभाग तो अजघन्य अनुभाग तो, जो जघन्य नहीं वो अजघन्य, तो जघन्य कब होगा? क्षपणा में होगा। अजघन्य अनुभाग तो अनादि, ध्रुव और अध्रुव के भेद से तीन प्रकार का है। अनादि तो सबके लिए है, भव्यों में हम कहेंगे अध्रुव है और अभव्यों में कहेंगे ध्रुव है, क्योंकि इन प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग क्षपक श्रेणी में प्राप्त होने से अजघन्य अनुभाग में सादी विकल्प के सिवा शेष तीन विकल्प बन जाते हैं, यानी जो अजघन्य है वो अनादि है, ध्रुव और अध्रुव है, भव्य अभव्यों की अपेक्षा लिए उसमें, तथा इन तेरह प्रकृतियों का शेष तीन प्रकार का अनुभाग नौ नौकषाय और चार संज्वलन, ये जो तेरह प्रकृतियां हैं इनका शेष तीन प्रकार का अनुभाग कौन सा? अजघन्य, अनुत्कृष्ट और उत्कृष्ट। और इसके इनके सिवा शेष प्रकृतियों का चारों प्रकार का अनुभव कादाचित का होने से, कादाचित यानी कभी कभी होने से सादी और अध्रुव है। क्योंकि उनके जो क्षपक श्रेणी में तो जघन्य होगा, तो जघन्य के अलावा जो अन्य जो है हाँ, तो कभी कभी हो गए। क्योंकि अजघन्य तो होता आया है, अजघन्य तो होता आया है, कभी उत्कृष्ट भी हुआ था, कभी अनुत्कृष्ट भी हुआ था, तो उसके लिए उसमें शादी का। अजघन्य मीन्स अजघन्य में शादी के बिना लिए थे हमने, और बाकी के यहाँ स्वामित्व, ये एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व कहेंगे। स्वामित्व दो प्रकार का है, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का स्वामित्व और जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामित्व। मौन का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव करता है, इसलिए वह तो उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का स्वामी है ही, साथ ही उसका घात हुए बिना ऐसे जीव के एकेंद्रिय आदि अन्य पर्यायों में मरकर उत्पन्न होने पर एकेंद्रिय आदि अन्य जीव भी मुनि के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति के स्वामी हैं। मात्र भोग भूमि के तिर्यंच और मनुष्य तथा आनतादि के देव उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति के स्वामी नहीं होते, क्योंकि एक तो उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों की इनमें उत्पत्ति नहीं होती, दूसरे इन जीवों के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध नहीं होता, जैसे हमने स्थिति विभक्ति में देखा था अंत कोड़ा कोड़ी वाले होते हैं, अर्थात वहां तो भोग भूमि वालों में तो अल्पतर वाली बात देखी थी हमने। सामान्य से मोहनीय का जघन्य अनुभाग क्षपक श्रेणी में प्राप्त होता है, इसलिए अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्राय क्षपक जीव जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामी है। मोहनीय के अवांतर भेदों में ये समझ में आती है बात, सूक्ष्म सांप्राय भी एक अंतर्मूर्त का है, जब उसमें प्रवेश किया है तो जितना अनुभाग है वहां पर, जैसे निशे के गल रहा है, वहां अनुभाग जो है प्रति समय एक तो उदय रूप अनुभाग है, जितना उदय रूप है वो तो उदय होगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, परंतु अभी जो ऊपर पड़े हैं तो जब वो उदय रूप होते हैं तो उस समय उनका अनुभाग का घटना प्रति समय चल रहा है, प्रति समय वो अनंत गुणा घटकर उदय में आता रहता है। तो मिनिमम अनुभाग कब होगा? अंतिम समय वाले के, क्योंकि उसका उदय होकर वो तो अभी निकल जाने वाला। मोहनीय के अवांतर भेदों में मिथ्यात्व 16 कषायों और 9 कषायों की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का, अनुभाग के बाद कॉमा नहीं चाहिए, स्वामी मोहनीय सामान्य की अपेक्षा जो स्वामित्व कहा है उसके समान ही है, यानी जो उत्कृष्ट संकलेश करने वाला संगीत पंचेंद्रिय जो पर्याप्त जीव है मिथ्या दृष्टि उसकी बात है, तथा सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का स्वामी उनकी सत्ता वाले सब जीव है। मात्र दर्शन मोनी की क्षपना करने वाला जीव उत्कृष्ट अनुभाग का घात करने के बाद उसका स्वामी नहीं है। अब यहीं तक हम रुकते हैं, कल लेंगे बाकी बातें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत होलो।